हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद तृतीय अध्याय श्लोक नंबर 36। इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो क्या है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनाशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टम् स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरधारुण बिम्बफलाधरोष्ठा पुरेन्द्रसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्व अहं न जाने। यं ब्रह्मा वरुणीन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति देवैस्तवी वेदी सांगपत क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तत्कतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदो सुरासुरगणा देवाय तस्मे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। पहला स्कंद तीसरा अध्याय श्लोक नंबर 36। कृपया इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। सवा इदं विश्व मामोघलील सृज्यत्यवत्यत्ति न सज्जतेऽस्मिन् भूतेषु चान्तर्हित आत्मतन्त्र षड्वर्गिकं जीग्रति षड्गुणेश सवा इदं विश्व मामोघलील सृज्यत्यवत्यत्ति न सज्जतेऽस्मिन् भूतेषु चान्तर्हित आत्मतन्त्र षाड्वर्गिकं जीग्रति षड्गुणेश सवा इदं विश्व मामोघलील सृज्यत्यवत्यत्ति न सज्जतेऽस्मिन् भूतेषु चान्तर्हित आत्मतन्त्र षाड्वर्गिकं जीग्रति षड्गुणेश सवा इदं विश्व मामोघलील सृज्यत्यवत्यत्ति न सज्जतेऽस्मिन् भूतेषु चान्तर्हित आत्मतन्त्र षड्वर्गिकं जीग्रति षड्गुणेश सवा इदं विश्व मामोघलील सृज्यत्यवत्यत्ति न सज्जतेऽस्मिन् भूतेषु चान्तर्हित आत्मतन्त्र षाड्वर्गिकं जीग्रति षड्गुणेश सवा इदं विश्व मामोघलील सृज्यत्यवत्यत्ति न सज्जतेऽस्मिन् भूतेषु चान्तर्हित आत्मतन्त्र षाड्वर्गिकं जीग्रति षड्गुणेश सवा इदं विश्व मामोघलील सृज्यत्यवत्यत्ति न सज्जतेऽस्मिन् भूतेषु चान्तर्हित आत्मतन्त्र षाड्वर्गिकं जीग्रति षड्गुणेश शब्दों का अर्थ स वा इदम् स मन वह मन परमेश्वर वा यानी अथवा इदम् इस विश्वम अमोघलीला विश्वम मतलब प्रकट ब्रह्मांड को अमोघलीला मतलब जिसके कर्म निष्कलंक हैं सृजत्य वत्यति सृजति मतलब उत्पन्न करता है अवत्यति मतलब पालन करता है तथा संहार करता है न सज्जते स्मिन न मना नहीं सज्जते मतलब प्रभावित होता है इसमिन यानी इनमें भूतेषु चांतर हित आत्मतंत्र भूतेषु अर्थात समस्त जीवों में च अंतरहित यानी भीतर रहकर आत्मतंत्र यानी स्वतंत्र, षड वर्गिकम अर्थात भगवान के षड ऐश्वर्य से युक्त जागृति यानी सुगंधी की तरह ऊपर ऊपर आसक्त, षड वर्ग षड गुणेश अर्थात छह इंद्रियों के स्वामी। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति एसी भक्तिदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। अनुवाद, जिनके कर्म सदैव निष्कलंक होते हैं वे भगवान छह इंद्रियों के स्वामी हैं और छह ऐश्वर्यों से सर्वशक्तिमान हैं। वे दृश्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं, उनका पालन करते हैं और रंच मात्र भी प्रभाववित होते बिना उनका संहार करते हैं। वे समस्त जीवों के भीतर विद्यमान रहते हैं और सदैव स्वतंत्र रहते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान तथा जीवों के बीच का मुख्य अंतर इतना है कि भगवान सृष्टा हैं और जीव सृष्ट हैं। यहाँ पर उन्हें अमोघ लीला कहा गया है, जिससे सूचित होता है कि उनकी सृष्टि में कुछ भी शोचनीय नहीं है। जो लोग उनकी सृष्टि में गड़बड़ी उत्पन्न करते हैं वे स्वयं व्यग्र रहते हैं। वे समस्त भौतिक संतापों से परे हैं, क्योंकि वे सह ऐश्वर्यों अर्थात धन शक्ति यश सौंदर्य ज्ञान तथा त्याग से संपन्न हैं। इस प्रकार वे इंद्रियों के स्वामी हैं। उनके द्वारा इन दृश्य जगतों की सृष्टि उन जीवों के उद्धार के लिए होती है जो तीन प्रकार के क्लेशों से ग्रस्त हैं। वे उनका पालन करते हैं और समय आने पर किसी प्रकार से प्रभावित हुए बिना उनका संहार कर देते हैं। वे इस भौतिक सृष्टि से बाह्य रूप से उसी तरह से संबंधित हैं जिस प्रकार किसी सुगंध युक्त पदार्थ से संबंधित हुए बिना कोई सुगंध का सेवन कर सकता है। अतएव अईश्वरी तत्व समस्त प्रयासों के बावजूद भगवान के पास तक नहीं पहुंच पाते। श्री प्रभुपाद की जय हो। मूकं कुरु तु वाचालं पंगुं लंघयति गिरं यत् कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं। अत्यंत ही सुंदर श्लोक है। आज सुत गोस्वामी भगवान की लीलाओं के विषय में बता रहे हैं। वे कहते हैं स वा इदम, यानी स का क्या मतलब होता है? स मतलब वही। वही का क्या मतलब हुआ? जो पहले वाले श्लोक में कहा ना उसी के बारे में। जैसे हम बात करते हैं फिर बोलते हैं एक बार उसका नाम बताते हैं फिर बोलते हैं वही वो ऐसे करता वो ऐसे करता ऐसे बोलते हैं ना, तो उसी तरह स वा इदम, स मतलब वही। वही तो कौन सा? जो सुत्त गोस्वामी ने श्लोक नंबर 35 में बताया। क्या? एवं जन्मानि कर्माणि यकर्तुर अर्चनस्य च, कि वो करते भी कुछ नहीं है, अकर्ता है और कभी जन्म नहीं लेते, अजन्म अजनस्य है, परंतु फिर भी एवं जन्मानि कर्माणि, फिर भी उनके जन्म और कर्म होते हैं। यानी कि होते तो हैं परंतु ऐसे नहीं होते जैसे हमारे होते हैं, जैसे हमारे भौतिक जन्म कर्म होते हैं और हमें भुगतना पड़ता, ऐसे नहीं होते। भगवान के जन्म और कर्म सब दिव्य होते हैं और उन्हीं को जो बुद्धिमान जीव बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वर्यन्ति स्म कवयो वेद गुह्यानि हृत्पते, वो क्योंकि सबके हृदय में बैठे हुए हैं। हृत्पते का मतलब होता है हृदय में बैठे हुए हैं, और हृदय में बैठे हुए का क्या मतलब होता है, भगवान के जैसे तीन रूप होते हैं ना, एक कौन से होते हैं, जैसे हमने पढ़ा था 1.2.11 में, वदन्ति तत्त्व विदः तत्त्वम् यज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान् इति शब्दते। तो तीन स्वरूप, तीन फेस बताए भगवान के, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो हृदय में जो भगवान का स्वरूप रहता है उसको परमात्मा कहा जाता है, और वो क्या करता है, अंदर बैठकर आपकी इच्छाओं को पूरा करता है, मतलब आपको सपोर्ट दे रहा होता है। भगवान भी बताते हैं 7.21 में, यो यो याम याम तरुम भक्ता श्रद्धया तुम इच्छति तस्य तस्य चराम श्रद्धा तामेव विदधाम्यहम्। मैं परमात्मा स्वरूप में संपूर्ण प्राणियों के हृदय में विराजमान हूँ, तो जो भी व्यक्ति जिस प्रकार की श्रद्धा को डेवलप करना चाहता है मैं उसकी सहायता करता हूँ। तो यहाँ पर भी यहाँ पर क्या कहा गया, वर्ण्यन्ति वर्ण्यन्ति स्म कवयो वेद गुह्यानि, क्योंकि वेदों को पढ़ने से उस भगवान को नहीं जाना जा सकता है, और वो हृदय में बैठे हुए हैं, वो चैत्य हैं, तो वो आपके हृदय में बैठकर वो देख रहे होते हैं, उपदृष्टा अनुमंताचा, वो आपको देख रहे हैं और अनुमति देते हैं, हाँ ठीक है ये करो, और सहायता करते हैं उसको करने के लिए। तो फिर है ना, जो बुद्धिमान होते हैं वो क्या करते हैं, उनके विषय में बात करना चाहते हैं, उनके विषय में प्रचार करना चाहते हैं, तो भगवान उनको ऐसा अवसर प्रदान करते हैं। तो यानी ये श्लोक नंबर 35 और 36 ये दोनों हमें भगवान के उस परमात्मा स्वरूप के विषय में बता रहे हैं जो हृदय में बैठा हुआ है। अब उस इस श्लोक में परमात्मा की बात हुई थी ना कि वो हृदय के अंदर बैठा हुआ है, उनके जन्म और कर्म सब दिव्य होते हैं, वैसे तो वो अजन्मा है, अकर्ता है, परंतु जन्म लेते हैं तो दिव्य होते हैं, और फिर वो आकर लीला करते हैं तो कैसे करते हैं, वो लीला के विषय में बता रहे हैं। स व इदम यानी वही भगवान, इदम यानी इस विश्वम यानी प्रकट ब्रह्मांड में, अब एक तो वो जन्म लेते नहीं है लेकिन लिया है तो जन्म इस प्रकट ब्रह्मांड में, विश्व में लिया, तो कैसी लीला करते हैं, अमोघ लीला। अमोघ का मतलब होता है कि जिसके कर्म निष्कलंक है, यानी ऐसा कोई कार्य भगवान नहीं करते हैं जो दोषपूर्ण हो, जो कलमश से ग्रस्त हो, जो अपवित्र हो, यानी भगवान की समस्त जो भी कार्य होते हैं, सवा इदम विश्वम अमोघ लीला, कि उनकी जो लीला होती है वो एकदम पवित्र होती है, दिव्य होती है, निष्कलंक होती है, और वो कौन सी लीला होती है, सृजत्य वत्यति, सृजत्य वत्यति न सच्चत, सृजत्य यानी कि उत्पन्न करने वाली, अवति अति यानी पालन, अवति का मतलब होता है पालन, और अति मतलब संहार करने। अब ये लीलाएं जो भगवान कर रहे हैं वो अभी तक भगवान की लीलाओं की बात नहीं हो रही है, जो भगवान परमात्मा रूप में या फिर क्षीरोदक्षाय विष्णु और कारणदक्षाय विष्णु, ये जो गुण अवतार लिए ना भगवान ने, शुरू शुरू में हमने जो पढ़े ब्रह्मा विष्णु महेश के स्वरूप में ये अवतार लिए, और उनके द्वारा जो लीलाएं की है, यानी तो कौन कौन सी लीलाएं हुई, गुणावतार से सृष्टि की उत्पत्ति हुई, सृष्टि का पालन हुआ और सृष्टि का संहार किया। लेकिन यहाँ पर फिर भी एक बात तो समझने की है कि ये जो सृष्टि की जो सृजन है ना वो ब्रह्मा जी के द्वारा होता है, है ना। अब सृजन ब्रह्मा जी के द्वारा होता है, पालन स्वयं विष्णु करते हैं, और संहार शिव जी के द्वारा होता है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सवा इदम, कि ये तो वही है जो हृदय में बैठा हुआ परमात्मा है वही कर रहा है। अब हृदय में बैठा हुआ परमात्मा सृजन कहाँ कर रहा है, सृजन तो ब्रह्मा जी कर रहे हैं। तो ऐसे हमें समझना चाहिए कि सृष्टि जो है यानी सृजन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक को सर्ग कहते हैं और दूसरे को विसर्ग कहते हैं। अब सर्ग का सर्ग जो भगवान के द्वारा जो सृष्टि होती है ना उसको सर्ग कहते हैं, और जो भगवान के बनाए हुए जीवों के द्वारा जो यानी ब्रह्मा जी के द्वारा जो सृष्टि होती है उसको भी सर्ग कहते हैं। अब देखो जब ब्रह्मा जी बने, अभी तक ब्रह्मा जी नहीं बने थे, तब भी तो भगवान ने है ना सृष्टि स्टार्ट कर दी थी। सबसे पहले कारण लक्षा विष्णु, सबसे पहले है ना व्यूज निकले थे, शंकरषण अनिरुद्ध प्रद्युम्न और वासुदेव, ये सारे व्यूज निकले थे। शंकरषण से फिर महाविष्णु, और महाविष्णु से कारण दक्षा विष्णु, से फिर गर्भो दक्षा विष्णु, शिरो दक्षा विष्णु, फिर गर्भो दक्षा विष्णु, और ये सब जब ना उत्पन्न किए थे ये भी तो सृष्टि हुई थी ना। तो यानी कि ब्रह्मा जी के जन्म होने के बाद तो ब्रह्मा जी सृष्टि करेंगे ना, लेकिन इसका मतलब है ब्रह्मा जी से पैदा होने से पहले जो सृष्टि हुई वो किसने की? वो भगवान ने की है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है सृज्यत। और इसके बाद भी जब ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं तो जितने भी उसके लिए सामान चाहिए होता है, जो मटेरियल चीजें, जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होती हैं, वो भी भगवान ना प्रोवाइड करते हैं। जैसे हमने पढ़ा जन्मादर से या तौन व्यादि तरह तक, तो जो महातत्व है भगवान बनाते हैं उसमें 24 एलिमेंट्स, 24 तत्व यानी जिसको प्रधान कहते हैं महातत्व, वो देते हैं। और फिर इस तरह से सृष्टि किसने की है? शुरू में भगवान ने किए। अभी भगवान ने ब्रह्मा जी को भी स्वयं ब्रह्मा जी को भी तो भगवान ने बनाया। और जब ब्रह्मा जी है ना सृष्टि कर रहे थे तो उनको पता भी नहीं था कि मैं कैसे सृष्टि करूं। सबसे पहले चार कुमार को पैदा किया और चार कुमार को बोला तुम सृष्टि करो, अभी चलो विवाह करना। उन्होंने बोला नहीं भाई, हम लोग नहीं कर रहे हैं विवाह, हम तो ब्रह्मचर्य रहेंगे। वो छोड़ के चले गए। फिर नारद जी आए, नारद जी को बोला तुम है ना सृष्टि करो, अभी मैंने तुमको किया। तो फिर नारद जी ने भी मना कर दिया, बोला मैं नहीं कर रहा हूं, मैं भी ब्रह्मचारी बनूंगा। तो ब्रह्मा जी को इतना गुस्सा आया, बोला मेरे को भगवान ने पैदा किया, मैं उसकी सारी बातें मानता हूँ, मुझे भी बोला है सृष्टि करो मैं करो, मैं जिसको पैदा करो मेरी बात ही नहीं मान रहा। तो फिर है ना भगवान उनको बताते हैं कि आप है ना कन्या नहीं, मतलब कन्या तो वो दक्ष प्रजापति वगैरह जितने भी प्रजापति इत्यादि उत्पन्न करते हैं, और इस तरह से सृष्टि की वास्तविक सृष्टि जो है वो भगवान के द्वारा हुई। और पालन तो स्वयं भगवान ने, विष्णु का जो भगवान विष्णु है वो भगवान का ही, भगवान श्री कृष्ण का ही फैलाव है, अंश रूप है में, और वही करते हैं। और संहार कौन करता है? संहार वो करते हैं शिवजी। और शिवजी कौन है? वास्तव में शिवजी वो जो है वो शंकरषण का एक्सटेंशन है, और शंकरषण किसका एक्सटेंशन है? वो स्वयं भगवान का है। तो फिर भगवान ही अलग अलग स्वरूप यानी गुणावतार लेते हैं, और गुणावतार कौन से हैं? यानी कि विष्णु से सत्वगुण, विष्णु जी जो है वो सत्वगुण को धारण करते हैं, ब्रह्मा रजोगुण को धारण करते हैं, और महादेव तमोगुण को धारण करके प्रलय करते हैं। और क्योंकि ब्रह्मा जी को रजोगुण की आवश्यकता होती है सृष्टि की उत्पत्ति करने के लिए, और महेश को प्रलय करने के लिए तमोगुण में आना पड़ता है। इसलिए ये सब भगवान अलग अलग स्वरूपों में कर रहे भगवान ही। भगवान स्वयं भगवद गीता में कहते हैं कालोस्मि लोक क्षय, जितने भी लोक हैं उनको नष्ट करने के लिए मैं काल हूँ, मैं ही काल बनकर आता हूँ। तो इसका मतलब है ये जो सारा कार्य यहाँ पर लिखा हुआ है सर्वा इदम विश्वम अमोघ लीला। और फिर वो जो कार्य कर रहे हैं कौन सा? सृज्यत्यवत्यतिन, जो भी कार्य है पैदा करने का, पालन करने का और संहार करने का, वो कर रहा है भगवान स्वयं। उसमें कोई कलंक नहीं, उसमें कोई अपराध नहीं, उसमें कोई कलमश नहीं। और सज्जतेस्मिन, न सज्जतेस्मिन का क्या मतलब होता है? कि वो उसमें जरा भी प्रभावित नहीं होता है। यानी कि भगवान ये नहीं सोचते अरे मैंने इतनी मेहनत से ये सृष्टि बनाई थी, इतनी मेहनत से इसको पालन किया, और फिर आज मैं शिवजी के रूप में मैं इसको नष्ट कर रहा हूँ। यानी कि ऐसा नहीं है कि भगवान को उससे दुख होता, भगवान पर रंच मात्र भी इस न सज्जते इसमें यानी जरा भी उससे प्रभावित नहीं होते। वो क्यों होते? अब देखो हम जो कोई चीज बनाते हैं थोड़ा सा भी कोई भी ठंडे जूस बनाया और बच्चे को ऐसे होता है ना, कभी कभी हम लोग दूध गर्म करके देते हैं, मम्मी उधर फेस करती है तो बच्चा क्या करता है, दूध वॉश बेसिन में फेंक के बोल रहा था मैंने पिया। और अगर थोड़ा सा भी मम्मी ने देखी, मैंने इतनी मेहनत से तुम्हारे लिए गर्म किया और तुमने फेंक दिया उसको, इतना गुस्सा आता है। क्योंकि हम जो भी कार्य करते हैं उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, नीचे जाते हैं, पैसे पहले कमाते हैं, फिर पैसों से सामान लेते हैं, फिर वो बनाते हैं, और फिर अगर जाया हो जाता है, कोई भी चीज अगर बनाते हैं खराब हो जाती है तो हमें दुख होता है, क्योंकि उसमें हमें बहुत आसक्ति होती है। एक तो वस्तु के अंदर आसक्ति होती है और दूसरा वो बहुत परिश्रम से प्राप्त की होती है। वास्तव में भक्तों, दुख का कारण यही है, या तो आसक्ति या तो परिश्रम का, कि भाई मैंने इतनी परिश्रम से प्राप्त की है तो उसका दुख होता है कि भाई ना मैंने इतनी मेहनत की और वो जाया हो रही है। लेकिन भगवान क्या कहते हैं, माया अध्यक्षेण प्रकृति ही, ये जो सृष्टि है उसके लिए भगवान को मेहनत नहीं करनी पड़ती है कि हाँ सुबह उठेंगे भगवान और सारी है ना एलिमेंट्स जो 24 एलिमेंट्स हैं उनको बनाएंगे और फिर बैठे रहेंगे, आटा गूंदेंगे, फिर एक एक फेस बनाएंगे, उसके बाद आंख बनाएंगे, उसके बाद नाक बनाएंगे, मूर्ति एक इंसान की तैयार हो गई, फिर दूसरे डिजाइन की बनाएंगे, फिर चाइनीज बनाएंगे, फिर बंगाली बनाएंगे, वो इस तरह नहीं होगा। भगवान क्या कहते हैं, माया अध्यक्षेण प्रकृति, मैं केवल इच्छा मात्र से, ये जो प्रकृति है वो केवल भगवान की इच्छा मात्र से उत्पन्न होती है। भगवान इच्छा करते हैं वो प्रकट हो जाती है, भगवान इच्छा करते हैं वो अप्रकट हो जाती है। भगवान को इसके लिए कार्य नहीं करना पड़ता। इसीलिए तो हमने पहले पढ़ा, क्या पढ़ा, यह कर्त अजनस्य, वो कुछ भी करते नहीं है और वो कभी जन्म भी नहीं लेते हैं। ये तो केवल भगवान जो है वो लीला कर रहे होते हैं, और भगवान की इच्छा मात्र से, यानी कोई परिश्रम नहीं उसको। ऐसे हमने पढ़ा था चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट, कि भगवान जो है वो स्वराट है, स्वतंत्र है, उनकी सृष्टि को बनाने के लिए, उनकी सृष्टि को चलाने के लिए उनको किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। ये तो उनका खेल है कि वो कहते हैं कि भाई ठीक है ब्रह्मा जी बना दिया, आप ये करो आप ये करो, ये तो उनका अपना खेल है। वो यदि चाहे तो स्वतंत्र है, वो सब कुछ कर सकते हैं, और उनके लिए उसके लिए किसी के ना साथ की आवश्यकता नहीं है भगवान को, और ना ही सृष्टि करने के लिए या पालने के लिए और लय करने के लिए भगवान को कोई मेहनत की जरूरत पड़ती है। भगवान केवल इच्छा मात्र से ऐसा करते हैं, और इच्छा क्यों करते हैं भगवान, क्योंकि भगवान बहुत 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 कृपालु हैं। जब भगवान की तटस्थ शक्ति अर्थात जीव भगवान की सेवा को स्वीकार ना करके इस भौतिक जगत में आ जाती है, तो भगवान देखते हैं कि ये भौतिक जगत में आकर कितनी दुखी है। और श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं उनके द्वारा, यानी भगवान के द्वारा इन दृश्य जगतों की सृष्टि उन जीवों के उद्धार के लिए होती है जो तीन प्रकार के क्लेशों से ग्रस्त होते हैं। वे उनका अभी भगवान को इस सृष्टि को बनाने या बिगाड़ने का कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन क्योंकि वो जीव ने इतनी मूर्खता कर दी कि भगवान की अंतरंग शक्ति में ना जाकर भगवान की बहिरंग शक्ति यानी इस भौतिक जगत में आ गया, और यहाँ पर क्योंकि केवल दुख ही दुख है, आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक, ये तीन प्रकार के दुखों कृष्ण प्रभुपाद ने यहाँ पर इंगित किया कि ये दुख कंटिन्यूअस जीव भोग रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई समय ऐसा आएगा जिस समय इस संसार में रहकर उसके दुखों का निवारण हो जाएगा। इस संसार में जब तक जीव रहेगा तब तक दुखी रहेगा। तो भगवान इसलिए इस संसार को बारंबार पुनः यानी जीव को भी सृजन करते हैं, फिर वापस से उसका है ना मृत्यु हो जाती है, फिर वापस उसको दूसरा चांस मिलता है, फिर वापस से उसकी मृत्यु हो जाती है, दूसरा चांस। केवल जीव को भगवान इस स्थिति, ताकि वो उसको ये याद आ जाए कि मैं यहाँ पर कितना दुखी हूँ, मैं अपनी वास्तविक जगह पर जाऊं, मैं वहां पर आनंद प्राप्त करूं, वहां पर जाके संतुष्टि। क्योंकि जब तक जीव भगवान की शरण नहीं ले लेगा, तब तक उसे कभी भी शांति प्राप्त नहीं होगी, और जब तक जीव को ये ज्ञान प्राप्त नहीं होगा कि मैं भगवान का अंश हूँ, तब तक वो भगवान की शरण कैसे लेगा। तो भगवान इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं कि जीव को यह अवसर प्रदान करते हैं कि, और फिर साथ में भगवान ने इतने सारे शास्त्र और गुरु महाराज और साधुओं का संतों को यहाँ पर भेजा ताकि जीव को बारंबार ये याद दिलाएं कि यह भौतिक जगत तुम्हारे रहने की जगह नहीं है, यहाँ से तुम्हें जाना पड़ेगा। मृत्यु सर्व हरश्याम, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि सृजति यति, ये अति का मतलब होता है कि संहार हो जाना, और जो जो इस संसार में पैदा होता है उसका संहार होना अनिवार्य है, और जो कुछ भी हमने इस संसार में आकर जमा किया है, जो कुछ भी हमारा अपना है, जो चाहे हमारी धन दौलत हो, हमारा घर हो, हमारी प्रॉपर्टी हो, हमारी गाड़ी हो, हमारा बंगलो हो, इवन हमारे बच्चे हो, हमारी बीवी, हमारे जो कुछ भी हो, वो सब हमसे छीन लिया जाएगा। इसलिए भगवान संहार की लीला करके हमको बारंबार दिखा रहे हैं कि दूसरी चीजों को छोड़ो, ये जो पालित पोषित किया हुआ जो शरीर है जिसके लिए तुम सारा दिन मरते रहते हो कि मैं कैसे इस शरीर को खुश रखूं, कैसे ज्यादा से ज्यादा इसको खिलाऊं पिलाऊं, इसको सुंदर बनाऊं, इसको आकर्षित बनाऊं ताकि लोग मुझे देखकर आकर्षित हों, तो यह पालित पोषित जो तुम्हारा शरीर है उसको जलाकर राख कर दिया जाएगा। तो ये भगवान की अनुकंपा है कि बारंबार जीव को ये याद दिलाते हैं कि कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। जिनके लिए पूरी जिंदगी तुमने अपराध किया और भगवान की भक्ति ना कर कर उनको कमा कर खिलाने के लिए, उनके ही सुख, उनको सुख प्रोवाइड करने के लिए तुमने अपने पूरे जीवन को सत्यानाश कर दिया, भगवान का पवित्र नाम नहीं लिया, वो भी घर से निकाल देंगे, कहेंगे मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, तुम्हारे साथ तो तुम्हारे भगवान का नाम जाएगा, राम नाम साथ जाएगा। तो हम उस समय अगर विचार करें कि भगवान का नाम तो तुमने मुझे लेने ही नहीं दिया, सारी जिंदगी तो फरमाइशें करते रहे, तो फिर मैं भगवान का नाम लिया नहीं, वो मेरे साथ कैसे जाएगा, तुम चलो मेरे साथ। तो बोलेगी नहीं, मैं नहीं चलूंगी, भगवान का नाम। तो फिर उस समय बारंबार दिखा कर भगवान ये याद कराते हैं कि देखो कोई नहीं जाएगा, केवल मैं तुम्हारा साथ दूंगा, केवल मेरा नाम, मेरा श्रवण, मेरी कथाओं का श्रवण और भगवान के पवित्र नाम का जप, ये ही केवल हमारे हमारा साथ देगा। तो भगवान ये लीला क्यों करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जीव पर करुणा के कारण। लेकिन भगवान इससे तनिक भी सज्जते न सज्जते, इसमें उसमें जरा भी रंच पात्र भी उसमें लगाव नहीं होता है भगवान का, और न ही आसक्ति होती है। तो हमें ऐसे लग सकता है कि अब हम संसार में जो हमारे बच्चे होते हैं तो उनके साथ हम रहते हैं, और रहते रहते तो सारी सी बातें प्रेम हो जाता है, आसक्ति होती है, लगाव होता है, भगवान अपने धाम में है और हम यहाँ संसार में, भगवान को हमारे से इसीलिए लगाव नहीं रहता, क्योंकि वो अगर हमारे साथ रहते ना घर में आते तो फिर ना हम लोगों को, हम लोग में भी आसक्ति एक दूसरे से लगाव होता। तो उसका उत्तर देते रहते हैं कि नहीं, उसका उत्तर दे रहे हैं यहाँ पर सुत्त गोस्वामी, कहते नहीं आप तो एक घर में रहते हो, लेकिन भगवान क्या करते हैं, भूतेषु शांतर हित आत्मतंत्र। भूतेषु कैसे रहते हैं भगवान आपके साथ, सोचो जरा कि कारण दक्षय विष्णु जो है वो जब सृष्टि ना, जब कोई ब्रह्मांड को उत्पन्न करते हैं, श्वास लेते हैं, तो सबसे पहले भगवान क्या करते हैं, उस ब्रह्मांड में आकर लेट जाते हैं, है ना, गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में। और फिर गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में पूरे ब्रह्मांड में हर जगह पर भगवान है, जितना बड़ा ब्रह्मांड है, आप भले संसार के किसी एक कोने में चले जाओगे भगवान आपके साथ होगा, ऐसा नहीं है कि वो जगह पर तुम अकेले हो, भगवान आपके साथ है। और अगर वहां पर भी आपको दिखते नहीं है तो भी भगवान क्या करते हैं, फिर प्रत्येक प्राणी के हृदय के अंदर स्थित हो जाते हैं। भूतेषु चांतरहित, भगवान कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, हृदय के हर जीव के हृदय के अंदर केवल आत्मा नहीं, वो भगवान परमात्मा के रूप में भूतेषु चांतरहित उसके अंदर आकर उस जीव के हृदय में घुसकर बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो हमसे दूर है इसलिए लगाव नहीं है, लेकिन वो हमारे हृदय के अंदर बैठे हुए हैं। लेकिन फिर भी आत्मतंत्र, आत्मतंत्र का मतलब होता है स्वतंत्र है। ऐसा नहीं है कि वो मोहित हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि भौतिक शक्ति जो है, ये जो ब्रह्मांड है, ये जो संसार है, वो विनष्ट हो जाने वाला है। इसमें आसक्ति रखकर कभी भी हम संतुष्ट नहीं रह सकते। आसक्ति वास्तव में भगवान की हमारे अंदर आसक्ति है, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। अगर आसक्ति नहीं होती तो भगवान बारंबार जन्म मृत्यु वापस इस संसार में जन्म नहीं लेते, है ना। अगर आसक्ति नहीं होती तो प्रत्येक जीव के हृदय में आकर बैठते नहीं। लेकिन भगवान प्रेम करते हैं, भगवान की आसक्ति लेकिन इस भौतिक ब्रह्मांड से नहीं है, जीव से है। तभी तो उस पर इतनी करुणा कर रहे हैं, बार बार आ रहे हैं और उनको यह किसी भी किसी न किसी, जैसे हमने अभी 24 अवतारों के विषय में पढ़ा, किसी न किसी तरीके से भगवान केवल जीव को ये बताना चाहते हैं कि तुम तभी खुश हो सकते हो जब तुम अपना संबंध मुझसे जोड़ोगे। तो भगवान बार बार याद कराते हैं जीव को, इसका मतलब है वो प्रेम तो करते हैं, परंतु इस भौतिक जगत के सृजन से, पालन से और विनाश से कभी प्रभावित नहीं होते, क्योंकि वो स्वतंत्र हैं। और वो स्वतंत्र क्यों है उसके विषय में आगे बताते हैं। षाड्वर्गिकम, यानी कि षाड्वर्गिकम का मतलब होता है कि भगवान चीज ऐश्वर्यों से युक्त है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज टूट जाएगी या कोई चीज पैदा हो जाएगी, वो अगर खत्म हो जाएगी, उसका सृजन संहार हो जाएगा, तो फिर भगवान परेशान हो जाएंगे, अरे ये तो टूट गया, अभी इसका क्या करूं, या मैं मर गया अभी क्या करूं। भगवान संपूर्ण है, षडैश्वर्य से युक्त, यानी भगवान जो है उनके अंदर ये छह ऐश्वर्य परिपूर्ण मात्रा में है। ऐसा नहीं है कि आंशिक रूप में उनके अंदर बल है, आंशिक रूप में ज्ञान है, नहीं, संपूर्ण परिपूर्ण मात्रा में। पराशर मुनि बताते हैं, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रेयः ज्ञान वैराग्यस्य एव षडनाम भग इति गणः। भग का मतलब होता है ऐश्वर्य, और वान का मतलब होता है जो उन ऐश्वर्यों का एक मालिक हो, उसको मालिक, जैसे हम बोलते हैं ना भाग्यवान यानी भाग्य का मालिक, और बोलते हैं धनवान यानी धन का मालिक। लेकिन भगवान यानी जितने भी अपरेंसेस हैं, जितने भी षडेश्वरी हैं, उनका मालिक जो है, अब जिसके पास संपूर्ण ज्ञान होगा, संपूर्ण बल होगा, संपूर्ण वैराग्य होगा, तो फिर वो किसी चीज में क्या आसक्ति रखेगा, क्योंकि उसके पास तो पूरा पूरा वैराग्य है। वो किसी चीज के खत्म होने से क्यों है ना प्रभावित होगा, क्योंकि उसके पास पूरी शक्ति है, पूरा ज्ञान है, वो वापिस से बना सकता है। तो इसलिए क्योंकि भगवान स्वतंत्र है, भगवान के अंदर संपूर्ण मात्रा में सारे ऐश्वर्य है, इसलिए भगवान जो है वो नष्ट जते उससे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होते हैं। और कैसे रहते हैं, जिग्रति। जिग्रति का क्या मतलब होता है कि जैसे सुगंध की तरह ऊपर ऊपर आ सकता। अब जैसे अगर यहाँ पर कोई फूल होगा तो उस फूल को की सुगंध को लेने के लिए उसको आप बगैर स्पर्श करके भी, जैसे बहुत सारे फूल लगे हुए होंगे तो ऐसा नहीं है कि आप एक एक फूल को उठाओगे तभी आपको उसकी सुगंध आएगी, नहीं, वो तो फूल कहीं पर भी रखा होगा अपनी सुगंध, जैसे कहते हैं ना सुगंध कभी भी छुपाने से नहीं छुपती है, वो स्वतः आ जाती है। तो भगवान भी जो है ना, जिस प्रकार किसी सुगंधित जो पदार्थ होता है उससे संबंधित किए बिना भी सुगंध का सेवन करता है, तो उसी तरह से भगवान भी इस भौतिक सृष्टि से बाह्य रूप से उसी तरह संबंधित है। जैसे हमने पहले पढ़ा ना भगवान के विषय में कि वो अकर्ता या कर्तम अजनस्य, वो जन्म भी नहीं लेते, अकर्ता रहते हैं, वो तो केवल लीला करते हैं। और लीला किस प्रकार करते हैं वो आगे हम पढ़ेंगे, बहुत ही सुंदर श्लोक है 37 में, भगवान वो सुध गोस्वामी बताएंगे उनकी लीला के विषय में। लेकिन अभी क्या बता रहे हैं कि वो जिस तरह सुगंध लेने के लिए फूल को स्पर्श नहीं करना पड़ता, उसी तरह से भौतिक रचना को बनाने के लिए, पालने के लिए और संहार करने के लिए भगवान को भी उनका स्पर्श करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान केवल इच्छा मात्र से ये सब कुछ कर सकते हैं। और अंतिम शब्द लिखा है षट गुणेश, षड्वर्गिकम् जिग्रति षट गुणेश। षट गुणेश का क्या मतलब होता है, अच्छा हो इंद्रियों के स्वामी। अब हमारे पास कितनी इंद्रियां हैं टोटल? 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 10 इंद्रियां और एक मन, 11 हो गए। लेकिन ये षड्गुणेश क्यों 6 इंद्रियां कौन सी हैं? इनमें मुख्य जो ज्ञान इंद्रियां कही गई हैं, है ना, उनके विषय में बताया गया जिनके कारण हमें ज्ञान प्राप्त होता है, जैसे आंख, कान, नाक, त्वचा, रचना और मन। अब ये जो जीव के जितने भी ये इंद्रियां हैं, षट गुण एश, एश का मतलब होता है स्वामी है। जैसे भगवान का एक नाम है ऋषिकेश, यानी भगवान के स्वामी, भगवान जो है वो इंद्रियों के स्वामी है, ऋषिकेश। तो भगवान अगर इंद्रियों के स्वामी है तो इसका मतलब है जब तक भगवान प्रसन्न नहीं होंगे तब तक इंद्रियां प्रसन्न नहीं हो सकती। कोई ऐसे सोच सकता है कि मैं भगवान को छोड़ो, भगवान तो इंद्रिय लेस है, भगवान का तो कोई आकार नहीं है, भगवान तो निराकार है, मुझे संतुष्ट होने के लिए स्वयं को संतुष्ट करना पड़ेगा, तो फिर ऐसा नहीं होगा। क्योंकि भगवान क्या है? षट गुण एश, यानी जब तक भगवान की इंद्रियों को, अब भगवान को संतुष्ट करना है तो हमें इस बात पर ना, इस बात को जानना होगा कि भगवान की भी इंद्रियां हैं, वो देखते हैं, वे सुनते हैं, वे बात करते हैं, वे भी है ना हमारी सेवा को स्वीकार करते हैं। जब तक हम भगवान को इंद्रिय लेस समझेंगे कि वो निराकार है, श्रील प्रभुपाद जी अंतिम लाइन में बहुत ही सुंदर बात बताते हैं, अतएव अईश्वरी तत्व समस्त प्रयासों के बावजूद भी भगवान के प्रयास तक नहीं पहुंच पाते। यानी कि भले वो कितनी ही कोशिश करें, लेकिन यदि वो भगवान को ही नहीं जानना चाहते, भगवान के शरीर को ही नहीं जानना चाहते, भगवान के अस्तित्व को ही नहीं मानते हैं, तो फिर वो कभी भी भगवान तक नहीं पहुंचेंगे। तो यहाँ पर अत्यंत सुंदर तरीके से भगवान के विषय में, जो भगवान के परमात्मा स्वरूप है, उनके विषय में बताया, सवा इदम विश्व अमोघ लीलम, के उनकी जो लीला है वो इस संसार में जो होती है, जैसे पालन करना, सृजन करना और संहार करना, वो बिल्कुल निष्कलंक होती है, निष्कपट लीला होती है। और भगवान इसलिए इस समस्त से प्रभावित न होते, न सज्जते इसमें, उससे प्रभावित भी नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वो भगवान जो है वो परमात्मा के स्वरूप में भूतेषु चांतर हित आत्मतंत्र, कि वो समस्त जीवों के हृदय के अंदर बैठे होते हैं, लेकिन फिर भी वो आत्मतंत्र हैं, वो स्वतंत्र हैं। और क्यों स्वतंत्र हैं? षड्वागिकम, क्योंकि छह ऐश्वर्यों से युक्त हैं। और जिस प्रकार फूल की जो है होता है, फूल की सुगंध लेने के लिए उसको स्पर्श करने की आवश्यकता नहीं होती है, उसी प्रकार संसार की ये समस्त कार्य करने के लिए भगवान को उसमें लिप्त होने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन फिर भी षट गुणेश, वो जो भी संसार में जितने भी जीव हैं, उनकी समस्त इंद्रियों के स्वामी वही हैं। तो यदि जीव को प्रसन्न होना है तो उसका एकमात्र तरीका यही है कि हम भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करें। और श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान को प्रसन्न करने का एक ही तरीका है, कि जो भगवान ने कहा है, किसी को भी प्रसन्न करने का तरीका वही होता है जो उसने कहा है, उसकी आज्ञा का पालन करना। तो भगवान ने कहा है, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, कृष्ण बोलिया जीव भोग वांछा करे, कि संसार में जीव के दुखों का कारण ये है कि वो कृष्ण को भूलकर भोग की वांछा करती है। फिर भोग की इच्छा करने के बाद क्या होता है कि क्योंकि माया निकट स्थिति, माया झपट याद आ रही, फिर वहां पर माया होती है, वो उसको झपट लेती है, बोलती है हाँ ऐसे एंजॉय करो, ऐसे एंजॉय करो, ऐसे एंजॉय करो, लेकिन ऐसे एंजॉय नहीं होगा, ऐसे आप कभी भी तृप्त नहीं होगे, ऐसे कभी भी आप जो है ना वो संतुष्ट नहीं होगे। संतुष्ट कैसे होगे? भगवान कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मेरा आदेश है कि तुम मेरे अपने मन में मेरे विषय में सोचो, मेरे भक्त बनो, मद भक्तो मद्याजी मुझे नमस्कार करो, मामे वैश्यसि सत्यम दे, और फिर मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुमको मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि तुम मेरे पास आओगे। क्योंकि जब तक तुम इस भौतिक जगत में रहोगे तब तक तो तुम दुखी रहोगे, तो मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियो, तो मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं सत्य बता रहा हूँ कि ऐसे करोगे तभी तुम्हारे दुखों का निवारण होगा। इस संसार में रहकर भले कितनी भी कोशिश करोगे तो तुम्हारे दुखों का निवारण नहीं होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।